नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के विशेष मुद्दों पर बात, भारत के विचार रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास के लिए लोगों से कौशल और शक्ति का इस्तेमाल करने की अपील की। उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों ने श्रम संहिताओं को सराहा, कहा ये संहिताएं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा संचालित हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया, 4 संदिग्ध गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने आज राजभवन ईटानगर में PM गतिशक्ति के कार्यान्वयन और उपयोग की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के दाव को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्राप्त हुआ। और गुवाहाटी में भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन पहली पारी में 6 विकेट पर 247 रन बनाए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है एकजुटता, समानता और स्थिरता। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने श्री मोदी का स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्घाटन सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित होगा।
दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष G20 की अपनी अध्यक्षता में कई प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, कम आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना, न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए वित्त जुटाना तथा समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक दृष्टिकोण से प्रेरित भारत की G20 अध्यक्षता को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक आदर्श के रूप में देखा गया। जोहान्सबर्ग से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के विकास के लिए लोगों के कौशल और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के पुथपर्ती में प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई बाबा की शताब्दी के उपलक्ष्य में एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने साई कुलवंत हॉल में श्री सत्य साई बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि आध्यात्मिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और नागरिकों के सामूहिक प्रयास से 2047 तक भारत विकसित बन सकता है।
राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के अनुसार राष्ट्र निर्माण सभी संस्थाओं का कर्तव्य है। सत्य साई बाबा इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ऐसे अनेक कदम उठा रही है जिससे देशवासियों का जीवन सुगम और सरल हो तथा वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सके। भारत सरकार के इन प्रयासों में सभी संस्थाओं और नागरिकों को योगदान देना चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अभियान में 10 अत्याधुनिक पिस्तौलें बरामद किए, जिनमें 5 तुर्की निर्मित और 3 चीन निर्मित है। संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में बताया है कि गिरोह अत्याधुनिक विदेशी पिस्तौलों की तस्करी के लिए पाकिस्तान से ड्रोन का इस्तेमाल करता था। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया है कि मामले की जांच अभी जारी है। सरकार राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की क्षमता 17 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने और राष्ट्र विकास तथा राष्ट्र सुरक्षा में योगदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में इसकी भूमिका का विस्तार करने की योजना बना रही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 78वें NCC दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ये बात कही। NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा है कि NCC की उपस्थिति देशभर में 700 से अधिक जिलों में है और इसके 40% कैडेट्स महिलाएं हैं। उन्होंने कैडेट्स के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए साइबर जागरूकता और ड्रोन रोधी उपयोगों सहित आधुनिक तकनीक के महत्व पर बल दिया। भारतीय मजदूर संघ ने 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने का स्वागत किया है। मजदूर संघ के राष्ट्र सचिव गिरीश आर्य ने कहा है कि ये आजादी के बाद से श्रमिकों के पक्ष में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। उन्होंने कहा है कि इससे श्रमिक सशक्त होंगे और अनुपालन आसान होगा। भारतीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष डॉ दीपक जायसवाल ने कहा है कि लगभग 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र के कार्यरत हैं और नई श्रम संहिताओं के लागू होने से अब उनका न्यूनतम वेतन पूरी तरह सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े पुराने कानूनों को कोई आधुनिक प्रावधानों के साथ अपडेट किया गया है।
जो हमारी मांगे 100 साल में भी नहीं हो पाई और विश्व स्तर के जो मापदंड होने थे वो उसके लिए ये नींव का पत्थर का काम करेगा। मैं और कंसेंट के 14 श्रमिक संगठनों की ओर से मैं NFI2 का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनसुख मंडाविया को श्रमिकों को और उनके परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे आधी से अधिक जनता लाभान्वित।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल डायट केटी परनायक ने आज राजभवन ईटानगर में राज्य में पीएम गतिशक्ति के कार्यान्वयन और उपयोग की समीक्षा की। राज्य के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता, कमिश्नर प्लानिंग और दूसरे अधिकारियों ने इसके एप्लीकेशन पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य के हर डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और उन्हें पूरा करते समय पीएम गतिशक्ति रिपोर्ट जरिए का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्लेटफॉर्म अपने इंटीग्रेटेड डेटा के साथ राज्य की स्मार्ट प्लानिंग करने, देरी से बचने और सभी स्केटर्स में बेहतर कोऑर्डिनेशन पक्का करने में सक्षम होता है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज अरुणाचल प्रदेश के दाओ को ज्योग्राफिकल इंडेक्स GI टैग प्राप्त होने की सूचना दी है। दाओ एक पारंपरिक हाथ से बनी ब्लेड है जिसका इस्तेमाल सदियों से कई आदिवासी समुदाय द्वारा किया जा रहा है। ये राज्य की देसी कारीगरी को संरक्षित करने में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि यह पहचान राज्य की पुरानी लोहार की परंपराओं को, सांस्कृतिक एवं आर्थिक मूल्यों को दर्शाता है। आज दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले पारी में 6 विकेट पर 247 रन बनाए हैं। गोवा के पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सितारों की चमक बरकरार है। फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन भी फिल्म स्क्रीनिंग और मास्टर क्लासेस से लेकर उभरते फिल्म सितारों के साथ विशेष बातचीत तक सिनेमा प्रेमियों का मनोरंजन जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
एक विशेष मास्टर क्लास में प्रसिद्ध फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा ने जीवन, सिनेमा और कहानी की कला के बारे में बातचीत की। श्री चोपड़ा ने 1942 अ लव स्टोरी के 8K रेस्टोरेशन से लेकर अपनी पहली राष्ट्रीय पुरस्कार के किस्से साझा किए, खासकर तब जब वह युवा थे और आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहे थे। प्रसिद्ध कलाकार अनुपम खेर इफ्फी में अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट के जरिए अभिनेता की कुर्सी के बजाय निर्देशक की कुर्सी में दिखे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह फिल्म कभी हार ना मानो के मंत्र से प्रेरित है जिसने उनकी जिंदगी को एक अहम आकार दिया है।
मैं अपनी नीस को, जिसका नाम तन्वी है, मैं बहुत सालों से जानता हूँ। मैंने ऐसी खुश मिजाज लड़की देखी नहीं है और उससे पहले मैंने एक साल दिलखुश स्पेशल स्कूल में पढ़ाया। मुझे पता था कि मैं एक्टिंग करवा लूंगा।
वेनिस फिल्म महोत्सव में गोल्डन लायन विजेता फादर मदर सिस्टर ब्रदर तथा इटालियन फिल्म मस्कीटो से लेकर तेलुगु क्लासिक मलिश्वरी जैसी पसंदीदा फिल्में भी दिखाई गई जिन्होंने दर्शकों का ध्यान बांधे रखा। आज करीब पूरे दिन 50 प्रशंसित और अपेक्षित फिल्में दिखाई जा रही है। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार।
पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन और रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान की बहनों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मुद्दे पर कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफूज आई पाकिस्तान के खबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कराची में प्रदर्शन किए हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार कराची पुलिस ने प्रदर्शन स्थल में पहुंचने से रोकने के लिए कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के विशेष मुद्दों पर भारत के विचार रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास के लिए लोगों के कौशल और शक्ति का इस्तेमाल करने की अपील की। उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों ने श्रम संहिताओं का सराहा। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI द्वारा संचालित हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।